संख्या 10 सादा, पृष्ठ संख्या 11 अनुक्रम सही अध्ययन दृष्टि स्थापना, पृष्ठ संख्या 13 अंतः संगीत, पृष्ठ संख्या 28 लंबी कथात्मक कविताएं, पृष्ठ संख्या 92 राष्ट्रीय उद्बोधन, पृष्ठ संख्या 152 काव्य अभिजात्य से मुक्ति का प्रयास, पृष्ठ संख्या 174 ऋतु प्रार्थनाएं, पृष्ठ संख्या 229 प्रपत्ति भाव, पृष्ठ संख्या 296 परिशिष्ट, पृष्ठ संख्या 317 पृष्ठ संख्या 12 सादा, पृष्ठ संख्या 13 सही अध्ययन दृष्टि स्थापना। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे। निराला की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 के लगभग 7.5 वर्ष बाद प्रकाशित उनके अंतिम काव्य संग्रह संध्या काकली जनवरी 1969 के साथ ही उनकी संपूर्ण काव्य रचनाओं का प्रकाशन क्रम एक प्रकार से पूरा हो गया है। अभी भी संभव है इधर उधर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ कविताएं या उनके मित्रों के पास पड़ी कुछ रचनाएं संकलनों में आने से रह गई हों, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं मालूम पड़ती। मतवाला के प्रारंभिक अंकों में प्रकाशित कुछ कविताएं उनके किसी भी संग्रह में उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार प्रभा कानपुर में जून 1920 में छपी उनकी पहली कविता मातृभूमि भी किसी संग्रह में उपलब्ध नहीं है। कलकत्ते से प्रकाशित उनके प्रथम कविता संग्रह अनामिका पृष्ठ संख्या 40 कविताओं की संख्या कुल 9, एक आध्यात्म फल, 2 माया, 3 जलद, 4 अधिवास, 5 तुम और मैं, 6 जूही की कली, 7 पंचवटी प्रसंग, 8 सच्चा प्यार और 9 लज्जित। आकार गुटका, प्रकाशक नवजादिक लाल, 23 शंकर घोष लेन कलकत्ता की दो कविताएं सच्चा प्यार और लज्जित भी उनके काव्य संग्रह परिमल में सम्मिलित होने से रह गई हैं। शेष 7 कविताएं परिमल में शामिल कर ली गई हैं। इसी प्रकार उनका एक गीत मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका में छपा है जो उनके किसी भी संग्रह में संकलित नहीं है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में निराला अक्सर कविताएं अपने काव्य प्रेमियों और श्रद्धालुओं को दे दिया करते थे। इस तरह मुझे लगता है कि पुस्तकाकार प्रकाशित कविताओं से अलग उनकी कुछ कविताएं रह गई हैं। हालांकि मूल्यांकन की दृष्टि से इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। रिफरेंस 1, रिफरेंस अब संग्रहों में प्रकाशित होने से रह गई उनकी 39 कविताओं का एक संकलन असंकलित कविताएं शीर्षक से राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हो चुका है तथा इस संग्रह में भी प्रकाशित होने से रह गई 7 मौलिक और 3 अनूदित कविताएं निराला रचनावली में प्रकाशित हो गई हैं। पृष्ठ संख्या 14 श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा संपादित अपरा संग्रहों से चुनी हुई कविताओं का संकलन को छोड़कर निराला के कुल कविता संग्रहों की संख्या 13 ठहरती है। प्रकाशन क्रम के अनुसार उनके संग्रह इस प्रकार हैं। 1 अनामिका, 2 परिमल, 3 अनामिका। ब्रैकेट में सर्वथा नया संग्रह जिसमें प्रथम संग्रह अनामिका की कोई रचना सम्मिलित नहीं है। ब्रैकेट बंद। 4 गीतिका, 5 तुलसीदास, 6 कुकुरमुत्ता, 7 अड़िमा, 8 बेला, 9 नए पत्ते, 10 आराधना, 11 अर्चना, 12 गीत गुंज तथा 13 सांध्य काकली। इन सारे संग्रहों में कुल मिलाकर उनकी प्रकाशित मौलिक कविताओं की संख्या 686 ठहरती है। रिफरेंस 1। इसके अतिरिक्त 10 अनूदित कविताएं, ब्रैकेट में 5 रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताएं और 5 स्वामी विवेकानंद की, ब्रैकेट बंद, भी हैं, जिनमें 7 भारती भंडार इलाहाबाद से प्रकाशित अनामिका में संग्रहित हैं और 2 नए पत्ते तथा 1 अड़िमा में। इस प्रकार सभी संग्रहों को लेकर निराला के रचना वर्ष लगभग 40-50 वर्षों के व्यास में फैले हुए हैं। 1916 से लेकर 1961 तक इन्हीं वर्षों की भारतीय सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों तथा निराला के निजी जीवन की विडंबनाओं के बीच उनकी रचना प्रक्रिया का विकास हुआ है। अपने युग के प्रमुख कवियों में निराला ही ऐसे कवि हैं जिनके निजी जीवन और तत्कालीन भारतीय स्थितियों के बीच गहराता हुआ संघात कभी भी बंद नहीं हुआ है। यह निरंतर बना रहने वाला संघात ही वह तथ्य है जिसके संदर्भ में उनके कवि की मानसिक बनावट का अध्ययन उचित होगा। इसी से वह सर्वांतिक सर्वग्राही अव्यवस्था जन्म लेती है जो अनेक आवर्तों, लहरों और अनेक स्तरों पर उनकी काव्य रचना प्रक्रिया के विकसित, संभ्रमित और प्रतिफलित होने के लिए जिम्मेदार है। उनके समकालीन दूसरे महत्वपूर्ण कवि, चाहे वह प्रसाद हो या पंत या महादेवी, इस संघात को कविता में उतना अर्थवान नहीं बनाते, या यों कहें कि अपने निजी जीवन और काव्य रचना प्रक्रिया के बीच एक दोहरा सामंजस्य स्थापित करने की लगातार कोशिश ये सभी कवि करते रहे हैं। इस तरह का सामंजस्य और समझौता निराला ने अपने कवि जीवन में स्थापित करने का शायद कभी प्रयत्न ही नहीं किया। फलतः संघात की यह पीड़ा ही अनेक स्तरों और अनेक रूपों में उनकी कविताओं का मूल और बुनियादी स्वर है। उनका सारा जीवन संसारिक दृष्टि से असफल, अव्यवस्थित, विशृंखल, अतिशय व्यवहारिक और दुखद रहा है। आर्थिक विपन्नता इसमें प्रमुख रही है। इस सांसारिक दुखद नियति के आगे हार जीत की द्वंद्वपूर्ण मनः स्थिति और उसका अंतस्ताप ही निराला की रचनात्मकता की मुख्य दिशा बन गई है। रचना के आंतरिक क्षणों के फैलाव में गंभीर अध्ययन, चिंतन, मनन से निकले हुए निष्कर्षों, रिफरेंस एक निराला रचनावली के हिसाब से अब उनकी कुल मौलिक कविताएं 736 और अनुदित 17 होती हैं। पृष्ठ संख्या 15 को बार बार यह अंतस्ताप तीखा बनाता है। संसार के महान कलाकारों के जीवन में जितनी विडंबनाएं आई हैं, निराला उसी तरह की बल्कि उससे भी गहरी, आक्रामक और सांघातिक विडंबनाओं के शिकार रहे हैं। वैसे कोई भी रचनाकार जीवन के इस तरह से गर्हित संतापकारी रूपों द्वारा ग्रस लिए जाने के लिए अपने को खुला नहीं छोड़ देता और ना ही इसे एक सिद्धांत के रूप में अपने कलाकार जीवन में ग्रहण करता है। निराला ने भी वरदान समझकर नहीं बल्कि एक विवश कट यथार्थ की तरह ही इन विडंबनाओं को वाणी दी है। इसलिए जहाँ इस तरह की स्थितियाँ साधारण मनुष्य के जीवन को एक अकर्मण्यता, असहायता और परांगमुखता की ओर अग्रसर करती हैं, वहीं एक सच्चा और मौलिक रचनाकार इसे अनुभव संचय और उदात्त भाव का साधन बनाता है। निराला के साथ ही यही और ऐसा ही हुआ है जब वह कहते हैं, एक मरा हूँ हजार मरण पाई तो चरण शरण, दो दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तीन व्यर्थ प्रार्थना जैसे अब है पंजर पिंजर कर से, चार जनता के हृदय जिया जीवन विष विषम लिया, पांच बाहर मैं कर दिया गया हूँ भीतर पर भर दिया गया हूँ। तो रचना और काव्य के मुखर अर्थ से मौन की उसी सनातन भाषा तक पहुँचने का संकेत देते हैं जो अंततः सारी महान और सार्वभौमिक कविता का लक्ष्य है और जहाँ पहुँचकर कविता या कोई भी रचना एक सार्वभौमिक वास्तविकता और मनुष्य की आदिम नियति का गूढ़तम संकेत बन जाती है। लेकिन निराला की काव्य रचना के विकास को समझने और किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले उनकी रचना प्रक्रिया की आंतरिक संगति और उनकी यथार्थताओं से परिचित होना बहुत जरूरी है। इस निबंध के प्रारंभ में निराला की प्रकाशित कविताओं के आंकड़े प्रस्तुत करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है। उनके सारे पृष्ठ संख्या 16 काव्य संग्रहों में संकलित कविताओं की विषय वस्तु, शिल्प और उनकी भाषिक संरचना का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निराला की काव्य रचना प्रक्रिया के विकास को कालक्रम के आधार पर समझा और विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना बल्कि एक प्रकार से बहुत बड़ी भूल होगी। इसकी जगह उनकी रचना प्रक्रिया को रचना प्रक्रिया के अनेक स्तरों के हर समय साथ साथ क्रियाशील रहने के रूप में यदि देखा जाए तो उनकी कविता और उनके काव्य व्यक्तित्व को समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। अपने समकालीनों में निराला ही एक ऐसे कवि हैं जिनके विराट सर्वग्रासी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व में काव्य रचना प्रक्रिया के अनेक स्तर हर समय साथ साथ क्रियाशील रहे हैं। छायावादी काव्य सिद्धांत तो निराला के कालजयी कवि व्यक्तित्व के एक ही पहलू में समा जाते हैं। उनकी काव्य रचना का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो किसी भी काव्य सिद्धांत के घेरे में नहीं अटता। या तो वह अतिशय नवीन और विद्रोही दिखते हैं या अतिशय पुरातन। उनके काव्य संग्रहों के प्रकाशन समय के आधार पर उनके काव्य विकास को रेखांकित करना पूर्णतया असंभव है। उनके पहले संग्रह से लेकर अंतिम संग्रह तक प्रत्येक में रचना प्रक्रिया के अनेक क्रियाशील स्तरों का प्रतिफलन समान रूप से साथ साथ दिखाई देता है, चाहे वह खिन्नता, उदासी, अवसाद, सुख, निराशा और मृत्यु भय का अंतः संगीत हो या लंबी कथात्मक या आत्मचरितात्मक कविताएं हो, राष्ट्रीय उद्बोधन का स्वर हो, जनसाधारण के उन्नयन की आकांक्षा से रची गई नए ढंग की कविताएं हो, ऋतु गीत हो या प्रार्थनाएं हो, उनके प्रत्येक संग्रह में सभी तरह की रचनाएं समान रूप से मिल जाती हैं। निराला का काव्य व्यक्तित्व इतना विराट, गहन, गंभीर और कुछ ऐसा समाहीन लगता है जिसके अंदर बाहरी विचार और सिद्धांत और अध्ययन रेखाएं तिरोहित हो जाती हैं और फिर जो कुछ भी रचकर बाहर आता है वह सिर्फ निराला होते हैं। सामायिकता उनके व्यक्तित्व में घुलकर एक निजी और मौलिक रूप धारण करती है। रचना प्रक्रिया के ये कई कई आवर्त लगातार हर समय उनके काव्य व्यक्तित्व को आंदोलित करते रहते हैं और अनेक रंगों, ध्वनियों और अर्थों से भरी अनेक छवियों वाली कविताएं लगातार वह रचते चलते हैं। कालक्रम के आधार पर एक ही समय के आसपास रची गई भिन्न भिन्न ढंग की इन कविताओं में कोई तारतम्य और संगीत बिठाना विचित्र लगता है। इसलिए संभवतः निराला ने अपने काव्य संग्रहों के प्रकाशन के समय कविताओं का चयन ब्रैकेट में, अगर इसे चयन कहा जा सकता है तो ब्रैकेट बंद करते समय कविताओं को कहीं भी विषय वस्तु, शिल्प या भाषिक संरचना की एक रूपता के आधार पर पृष्ठ संख्या 17 विभाजित करने की ओर ध्यान भी नहीं दिया है, बल्कि अपने कवि व्यक्तित्व के अनेक रचना स्तरों को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा है। यहाँ तक कि गीतिका में भी, जो संगीत और गायन पक्ष को विशेष दृष्टि में रखकर लिखे गए गीतों का संग्रह है, इस तरह के अनेक रचना स्तर गीतों के बंद में सुरक्षित हैं। तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, इन दो को छोड़कर शेष सारे संग्रहों से मैं इस तरह की अनेक रंगी अनेक रचना स्तरों की कविताएं उदाहरण के रूप में रख सकता हूँ। संसार की किसी भी भाषा में ऐसे कवि बहुत कम होंगे जो रचना स्तरों के अनेक रूपों को साथ साथ वहन कर सकें और लगातार अनेक मुखी अर्थों वाली कविताएं रचने में समर्थ हों। इसका प्रमुख कारण यही था कि निराला ने जीवन को एक ही साथ अनेक स्तरों पर जिया। शायद जीवन और काव्य रचना में एक ही साथ संघर्ष और संघात के इतने सारे फ्रंट खोलने, लगातार लड़ते रहने और रचते रहने की मानसिक और शारीरिक थकान को समझने के बाद ही उनके मानसिक असंतुलन को समझा जा सकता है, और तब यह कोई ऐसी अजूबा स्थिति नहीं लगती, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क की एक सीमा तो होती ही है और निराला ने अपनी असीम शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ इस सीमा का, चाहे जाने या अनजाने, लगातार उल्लंघन किया। ऐसा न करना एक तरह की मानसिक समझौता परस्ती को प्रायश्चित देना था, जो निराला जैसे गहन, संवेदनशील, अहंकारी, उदात्त, अव्यवहारिक, भावुक और निपट मानवीय व्यक्ति के लिए असंभव था। जिस नरक यात्रा की चर्चा डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला के जीवन के एक समय विशेष में करते हैं, दरअसल वह नरक यात्रा तो उनके जीवन में सर्वत्र फैली हुई है। उसके अनेक आवर्त हैं, अनेक आरोह अवरोह हैं। उसमें ऐसी खिड़कियां भी हैं जहां से फागुन की आभा और बादलों की छवि रह रह कर झलक मारती है। उस नरक को ही निराला अपराजेय मन से रचना के असाधारण सौंदर्य तक ले जाते हैं। जीवन और जगत के इसी गहरे अनुभव से सिंचित रचना का वह असाधारण सौंदर्य ही इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है। मैं रहूंगा न गृह के भीतर, जीवन में रे मृत्यु के विवर। मृत्यु के इसी विवर से, इसी नारकीय यंत्रणा से मुक्ति के प्रयास में, शुद्ध किरण की खोज में, विमल आलिंगन का, वायु का स्रोत जानने के लिए वह बार बार नरक की इस खिड़की से झांकते हुए अपनी स्तब्धता का जिक्र करते हैं। अस्ता चल रवि, जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि, जीवन उन्मन। धीरे धीरे यह नरक यात्रा एक विशाल अनंत रचना यात्रा के रूप में परिवर्तित होती चलती है। उनकी इस रचना यात्रा की एकतनता और अनेक मुखता से अलग पृष्ठ संख्या 18 उन्हें उनके रचना वर्षों के विशिष्ट खंडों में बांटकर उनकी कविताओं की व्याख्या के प्रति सही अध्ययन दृष्टि नहीं अपनाई जा सकती। रचना अस्त्रों के अनेक क्रियाशील रूप उनके प्रथम कविता संग्रह अनामिका की 9 कविताओं में ही मिल जाते हैं। विषय वस्तु, शिल्प और भाषिक संरचना किसी भी दृष्टि से उनमें समान रूप से कोई एक रूपता नहीं है। जलद कविता जहाँ प्रारंभ से ही वर्षा ऋतु के प्रति उनकी गहरी रुझान का पहला परिचय देती है, वहीं छंद संयोजन और भाषिक संरचना की दृष्टि से बिल्कुल सरल है। यहाँ तक कि उसमें अंग्रेजी शब्दों का खुला प्रयोग निराला ने किया है। ग्रेड और डिग्री जैसे अकाव्यात्मक शब्दों का प्रयोग निराला ने किया है। तलाशित ऊर्ध्वांग से लेकर होशियारों बहकाया, बैठाल जैसे शब्दों का प्रयोग या प्रयोग का घालमेल इस प्रारंभिक कविता में निराला ने किया है। प्रारंभ से ही निराला हिंदी कविता के लिए एक नई भाषा की खोज में जाने अनजाने रत दिखाई देते हैं। शायद कालिदास और रविंद्रनाथ की भाषा में श, ळ, ल, व का विरोध करते हुए जहाँ अपनी भाषा को उन्होंने हिंदी की मूल प्रकृति की बनावट कहा है, वह आरंभ से ही उसी भाषा, छंद और कथन भंगिमा की खोज में लगे हैं। अपनी कविताओं का विरोध होते देखकर ही उन्होंने इस नासमझी के प्रति दुखी होकर यह कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने सदा हिंदी का मुंह देखा है। अपनी प्रकृति, सार्वजनीन मौलिकता और रचना दृष्टि के प्रति वह इतने सचेत और सजग हैं कि प्रतिद्वंद्वी और चुनौती देने वाले में उन्हें कालिदास और रविंद्रनाथ ही लगते हैं। जलत कविता की भाषा संरचना की इस तात्विक विशिष्टता के अलावा इस कविता में बादल के जिस रूप को उन्होंने चित्रित किया है, उसी का अनेक मुखी विकास ही आगे चलकर उनके बादल राग और वर्षा संबंधी अन्य कविताओं में हुआ है। यहाँ भी धरती माँ को हरा वसंत पहनाने वाले के रूप में अंततः उन्होंने जलत को देखा है और आगे चलकर उसे फिर ए मेरे अपने सपने और ए जीवन के पारावार कहकर संबोधित करते हैं। इसी तरह आध्यात्म फल, तुम और मैं तथा माया कविताओं के संवेदना दार्शनिक जमीन का स्पर्श करते हुए भी विभिन्न भाषिक संरचना के माध्यम अभिव्यक्त हुई हैं। आध्यात्म फल की भाषा और कथन भंगिमा एक गहरे व्यंग्य की अनुभूति लिए हुए है, जबकि माया और तुम और मैं संस्कृत की ध्वनि लहरियों से युक्त एक नई भाषिक संरचना का आभास देती हैं। अधिवास अपनी ही आध्यात्मिक सिद्धि और परम पद लाभ ब्रैकेट में अपने एक प्रारंभिक पत्र में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिखते हुए निराला ने अपना पूरा परिचय देते हुए लिखा है, जीवन का उद्देश्य बचपन से ही परम पद, पृष्ठ संख्या 19, लाभ ब्रैकेट बंद की आकांक्षाओं वाली काव्य रचना से पृथक जन सामान्य के समस्पर्श की एक शक्तिशाली उद्घोषणा है। कविता को उनकी अभिजात संवेदना से मुक्त करके उसे एक नई जमीन देने को निराला अपनी निजी काव्यात्मक उपलब्धि मानते हुए कहते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाए, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना आई। हृदय में पड़ी हुई दुख की यही छाया उन्हें बार बार अपनी ही रचनात्मक समृद्धि को ध्वस्त करके संवेदना और भाषिक संरचना दोनों धरातलों पर अपने दुखी भाई के निकट जाने को प्रेरित करती है। निराला के काव्य में आया हुआ सर्वसाधारण के प्रति यह अगाध प्रेम तथा कथित प्रगतिवाद की देन नहीं है। यह कविता उनके प्रारंभिक दौर की कविता है, जब हिंदी में प्रगतिवाद का कहीं नामो निशान भी नहीं था। संवेदना की अनेक परतें सदा उनकी रचना में साथ साथ खुलती रही हैं। कविता को उसके परंपरागत अभिजात्य से मुक्ति दिलाने का प्रयास लगातार निराला अपनी रचनाओं के द्वारा शुरू से ही करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जहाँ एक ओर जूही की कली लिखकर वह भाषा और संवेदना के दूसरे ही स्वारोह की सृष्टि करते हैं, वहीं अपने दुखी भाई को देखकर वह मैं की सर्वथा नई अप्रयुक्त शैली और रचना दृष्टि सगर्भ अपनाते हैं। साधारण जन के दुख से उनके हृदय में पड़ी इसी दुख की छाया का विकास आगे चलकर विधवा, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, दीन, खजूहरा, रानी और कानी, कुकुरमुत्ता, महंगू महंगा रहा और मानो जहाँ बैल घोड़ा है जैसी कविताओं में हुआ है। दुख की इस पड़ी हुई छाया की ही अंतिम परिणत इन पंक्तियों में होती है, जनता के हृदय जिया जीवन विषम लिया। जूही की कली एक दूसरी तरह की सौंदर्य रचना का प्रतिमान स्थापित करती है। यहाँ वह खिन्नता का स्वर नहीं है जो निराला में प्रारंभ से ही अपने प्रखर रूप में पाया जाता है। अपने ढंग से यह कविता रविंद्रनाथ की कविताओं की चुनौती से उपजी हुई है। इसकी सारी भाषिक संरचना अत्यंत गूढ़ सामासिक पद योजना से पूर्ण तत्सम शब्दावली की कांति से चमकती हुई सुघड़ है। एक संपूर्ण मानवीय व्यापार का प्रकृति पर आरोपण है। यद्यपि छंद प्रयोग की दृष्टि से यह स्वच्छंद छंद की कविता है, लेकिन इसका पूरा भावावेग गीतात्मकता से पूर्ण है। प्रेम और मिलन का अत्यंत भावमय तथा सूक्ष्म चित्रण इस कविता में किया गया है। कविता के पृष्ठ संख्या 20 इतिवृत्ति और विवरण को ही निराला ने एक बिंब में परिवर्तित कर दिया है। स्वरों के आरोह अवरोह से एक नई ढंग की भाव संवेदना की सृष्टि लगातार आगे उनके काव्य संग्रहों में मिलती है।